Om Shivaya Namah. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Isha Vasyopanishad, presented by Swami Sri Pratyak Bodhanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
तो वहां से लोग जब वेकेशन में ऐसे आते थे लौटते थे स्वामी जी के पास गया और ये सब मुझे लगा स्वामी जी खुश हो जाएंगे मैं उनको बात कहूंगा तो उनको आनंद हो जाएगा ऐसा सोच करके मैं ऐसा गया कि मैं विजयी हुआ मुझे पदक मिला चषक मिला तो मैंने जाकर जब बात बताई तो सीधे कह दिया उन्होंने वाग वही खड़ी शब्द झरी शास्त्र व्याख्यान कौशलम वैदुष्यम विदुतान दावत मुक्त है न तो मुक्त है एक दृष्टि दे देते हैं ठीक है मगर हमको जहां जाना है हमारा उद्देश्य जीवन का एक निर्दिष्ट एक दृष्टि उन्होंने दे दी कि जो हमारे सारे प्रवाह अभी प्रस्थान्तरी गुरुवर्य कह रहे हैं सभी को वंदन में यहां करता हूं निशानंद जी को गुरुनानंद जी को विभुआनंद जी ब्रह्मचारी जी सूर्यनारायण जी यहां सोमदत्त जी बड़ा अच्छा है सोमदत्त नाम कितना यज्ञ करने के बाद बड़ा बड़ा सोमयाग करने के बाद बड़े बड़े ऋषि वो सोम रस पिलाते थे तब उनका प्रसाद मिलता था जो येन दत्तम सोम सर्वेभ्यः सह सोमदत्तः तो सबको जो सोमदत्त पिलाते हैं उनको वंदन और विश्वनाथ जी जो इस आयोजन जुड़े हैं ये सभी महानुभावों को मैं वंदन करूंगा महाराज जी के प्रवचन सुनने जब आते थे एक बार उन्होंने भागवत जी के श्लोक का बड़ा अच्छा वर्णन किया था अभी गुरु क्या देता है ऐसी बात है ना सारे विश्व में भगवान फैला हुआ है हर एक जगह पर है तो सारे विश्व के इस भगवान हमारे आसपास सब जो कुछ बैठे हैं वो भगवान जब गुरु जब देता है शिष्य को तो उसको भगवान मान करके देता है श्रीमद् भागवत जी के तृतीय स्कंद में कपिल मुनि का ख्यान सुनाते हुए स्वामी जी ने कहा कपिल मुनि ने कहा है अथमाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयं अरहे दानमानाभ्याम मैत्र्याभिन्नेन चक्षुषा अथमाम सर्वभूतेषु भूतात्मानं कृतालयं मैं सारे विश्व में जितने लोग हैं जितने भी भूतमात्र हैं कीड़ी मकोड़ी से लेकर के चीटी से लेकर के हाथी तक ये जो सारे मनुष्य आपके आसपास है सब में भगवान है और इस सारे विश्व में जो भगवान इसकी पूजा कैसे की जाए तो मार्ग दिखाया अरहे दान मानाभ्याम मैत्रिया अभिन्न चक्षुषा आप पहले उनको दान दो आपके पास जो है उसे दे दो आप दान दे देंगे तो उसमें बैठे हुए भगवान की पूजा होगी मान लो आपके पास विद्या है आपने विद्या दे दिया तो उसमें बैठा हुआ भगवान प्रसन्न हो गया उसकी आपने पूजा की आपसे कोई बड़ा है आपके पास वित्त है आप वित्त दे दो आपके पास विद्या है आपके पास जो कुछ भी आप देते जाओ आपने उसमें बैठे हुए भगवान की पूजा की आपसे जो बड़े हैं ज्ञान में बड़े हैं वित्त में बड़े हैं आप उनको वंदन किए उनको मान देंगे हां उसमें बैठे हुए भगवान की आपने पूजा की आपके करीब आपके जैसे जो हैं आपके मित्र हैं आप उनके साथ मित्र भाव रखेंगे आपके समान जो लोग हैं तो उसमें बैठे हुए भगवान की आपने पूजा की और एक अभिन्न चक्षुषा एक समय ऐसा आ जाए कि आप दूसरों में कोई भेद न समझें उस स्थिति पर आ जाए तो उसमें बैठे हुए भगवान की आपने पूजा की तो ये जो गुरु पूर्णिमा के दिन, व्यास पूर्णिमा के दिन व्यास जी ने जो परंपरा आज 5000 साल से परंपरा आ रही है और स्वामी जी ने इस परंपरा को बहुत बढ़ावा दिया है, इन ब्राह्मणों की पूजा को जो अभी सोमदत्त जी ने कहा, ये पूजा करने के बाद सोचना क्या है कि वास्तव में हम इस पूजा के लायक हैं कि नहीं, हम कितना आगे बढ़े हैं। जो गुरु वो हो सकता है, जैसे दत्तात्रेय जी ने सबको गुरु बनाया, इसका मतलब है जिस दूसरों के पास से सीखने की इच्छा अंत तक जो रहती है वही गुरु बन सकता है। गुरु ऐसे होते थे शिष्यादिच्छेद परायम, मुझसे मेरा शिष्य आगे बढ़ जाए ये इच्छा रखता था। हरेक जीव अपने पूर्व जन्म के कुछ चीजें लेकर के आता है, उसके पास कुछ संस्कार रहते हैं, वो जिस घर में पला है, जिस वातावरण में पला है, वहां से भी उसने कुछ पाया है, और जब गुरु के पास आता है तो गुरु के पास जो कुछ भी है वो पूरा पूरा वो अपने शिष्य को दे दे रहे, समझो चवन्नी के जितना उसके पास है, और गुरु ने अपना पूरा रुपया दे दिया तो शिष्य सवाय हो गया कि नहीं। मगर शिष्य को यह समझना चाहिए, उसे अपनी चवन्नी ठिकाने पर रखनी चाहिए, अगर उसमें अहंकार आ गया तो हो गया काम से। तो गुरु गुरु बना देता है। अभी आपने सुना, हम स्वामी जी के चरणों में आज यहां बैठे हैं, व्यास जी से लेकर इस परंपरा को वंदन करें, स्वामियों के चरणों में वंदन करें, और इस पूर्णिमा के दिन हम अपने जीवन को परिपूर्ण होने के मार्ग में हम आगे बढ़ें, यही इनसे प्रार्थना करके मेरे अपने शब्दों को विराम दें।
बहुत सुंदर भाव हमारे शास्त्री जी ने रखे। महाराज श्री ने सोम की व्युत्पत्ति हम ही से पूछ दी कि सोम दत्त मतलब क्या समझते हो, तो जैसे आपने कहा सोम मतलब अमृत से, सोम मतलब चंद्रमा से, ऐसा हमने बताया जो हम बाल वक्त थे इस बच्चे जितने रहे हो, तो कहे नहीं, सौ उमा इति सोमा, जो शंकर पार्वती के साथ हो वो सोम। तो ये तो है। अच्छा, अब गौतम उठा लें हम, तो अब महाराज जी की प्रणाली में आज गुरु पूर्णिमा है, तो ये गौ मतलब इंद्री, तो जो इंद्रियों के अंधकार को दूर करे वो प्रकाशक बुद्धि, और वो बुद्धि हमारी गुरु एक, वो हुआ गौतम। गौ मतलब गाय, जो गायों का संवर्धन करे, जो गायों का रक्षण करे, जो उनकी दरिद्रता दूर करे वो कृष्ण, वंदे जगत गुरुम, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, गुरु दो गौतम। गौ पृथ्वी, जो पृथ्वी का अंधकार हरण करे सूर्य, बुद्धि का देवता वो है गुरु सूर्य, तीन। तो ये तीन तीन गौतम गुरु के रूप में गौतमाचार्य यहां उपस्थित हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। बना लेना ऐसे, तो ये तो क्या है कि बुद्धि का खेल है, तो दो उधर से मिला तो दो तीन इधर से मिलेगा। मैं आप लोगों के आशीर्वाद से परम पूज्य स्वामी जी से अनुरोध करता हूं कि ध्यान योग महाराज श्री का रिप्रिंट होके आया है, बारिश की वजह से यहां उपस्थित नहीं हो पाया, पर हमारे पास प्रतियां थी कुछ, तो ललित भाई प्रीतमान जी महाराज स्वामी जी के कर कमलों से उसका लोकार्पण करा दें, और उसके बाद उद्बोधन होगा, अध्यक्षीय उद्बोधन, फिर भूदेवों का सत्कार होगा। आप सब लोग शांति से बैठे रहें, इस आयोजन का आनंद लें, हर रह लगे न फिटकरी रंग आए चोखा। आपका क्या जाता है थोड़ा समय तो,
आप यहाँ ध्यान में मत बैठिए थोड़ा देर के लिए। ध्यान दो, ध्यान में बैठोगे तो यहां जो है ना लक्ष्मी चली जाएगी। लक्ष्मी के लिए कम से कम है ना योग तो करिए, पर लक्ष्मी योग करिए। लक्ष्मी कब मिले कब मिले कब मिले, है ना। सर्वे गुणा कांसना मासुरयंती, ये सिद्धांत आएगी नहीं तो देखिए। ये ध्यान योग महाराज जी का पहले का पुस्तक अभी कलेबर में बड़ा हो गया, और इसका कीमत कितना रखा,
100 रुपये।
हाँ सस्ता है यो, 100 रुपया रखे हैं, परंतु कमीशन मिलेगा आज यदि
30%
30% कमीशन मिलेगा आज लेंगे तो
एक सप्ताह तक 50% कर दिए महाराज जी। हाँ ऐसा किया है कि 20% दे रहे हैं सत साहित्य, 20% प्रेमपुरी और 10% हमारे राजकुमार जी शोरे वाला
सब्सिडी दे रहे
50%
सब्सिडी है, सब्सिडी।
अब ये 50 रुपए में हो गया महाराज जी, अभी 50 रुपए में अब हो गया एक सप्ताह तक के लिए।
अरे प्रबंध रह गया, प्रवचन तो हो गया, प्रवचन हो गया, महाराज जी का प्रवचन सुना, हमारे महाराज जी का प्रवचन दाएं बाएं बढ़िया से बढ़िया प्रवचन सुना, और सुनने का बाकी क्या गया। हाँ फिर भी आदेश है थोड़ा बोलूं तो देखिए, आज पूर्णिमा है, पूर्णिमा तो पूर्णिमा हर महीने में आता है, आती है कि नहीं, ये आषाढ़ी पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा के साथ गुरु लगा दिया, गुरु को चढ़ा दिया तो क्या बन गया, गुरु पूर्णिमा। हर महीना को गुरु पूर्णिमा बोलते हो क्यों, इस महीने में क्यों बोला, इसके नाम एक नाम और है व्यास पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं, इसको व्यास पूजा भी कहते हैं, आज व्यास पूजा होती है, यानी बात तो गुरु है। गुरु गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु के पास कौन जाएगा, गुरु क्यों करना चाहिए, ये प्रश्न सब पूछते हैं। देखिए तीन प्रकार के गुरु माना गया है, नोदको बोधक मोक्षदर्श। एक गुरु होता है नोदक, व्याकरण के दृष्टि से, एक होता है बोधक और एक होता है मोक्षद गुरु। नोदक गुरु उसको कहते प्रेरणा देवे शास्त्र का, वंश परंपरा गुरु है कि नहीं, नारायणम पद्मभवम वशिष्ठम शक्तिम से तत्पुत्र पराशरम से जो आप लोग पढ़ते हैं ना, ये कौन सा गुरु है, नोदक गुरु है। नोदक क्यों, ये सब गृहस्थ गुरु है। नारायण से कौन पैदा हुआ, पद्मभवम, पद्मभवन से कौन पैदा हुआ, वशिष्ठ जी आए कि नहीं, तो वशिष्ठ जी कितने कितना पुत्र थे वशिष्ठ जी का, वशिष्ठ जी का ना 100 पुत्र वाला आए थे, सन्यासी है कि गृहस्थ है, हाँ इतना बेटा वाला है, अरे सैन्य वो 100 पुत्र को तो उसने मार ही दिया था, कौन विश्वामित्र ने मार दिया था कि नहीं, तो बाकी भी कितना कुछ रहा होगा ना। तो नोदक वंश परंपरा के गुरु, प्रेरणा देने वाला आचार्य कहते हैं, बोधक गुरु विद्या देने वाले, गुरुकुल में रह करके जो विद्या का अध्ययन करते हैं ना उनका नाम है बोधक। बोधक गुरु विद्या का एक शस्त्र विद्या एक शास्त्र विद्या, दोनों प्रकार के विद्या को अध्ययन या पढ़ाने वाले का नाम बोधक गुरु और एक होता है मोक्षोदा गुरु, मुक्ति देने वाला गुरु। तो मुक्ति देने वाला गुरु कौन है? इसके लिए शास्त्र में उपनिषद में मंत्र बतलाया, परीक्ष्य लोकान कर्मसितान ब्राह्मणो निर्वेद माया नास्ति अकृत कृतेन स गुरु में अभिगच्छित समित पाणे श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ गुरु में अभिगच्छित, तो गुरु का विशेषण बतलाया, गुरु कैसा होना चाहिए? श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, केवल श्रोत्रिय नहीं, केवल ब्रह्मनिष्ठ नहीं, उभय विशेषण से विशिष्ट जो गुरु होगा उनके पास जाना चाहिए। श्रुति को भी जानने वाला हो और आत्मा में निष्ठा भी हो। आत्मनिष्ठा होगा, श्रुति का ज्ञान नहीं होगा तो इनके पास भी जाना नहीं। क्यों? उनके पास क्यों नहीं जाना? वो तो आपने आत्मनिष्ठ तो आपने को उद्धार संसार सागर से करेगा, परंतु जिज्ञासु को उद्धार नहीं कर सकता। कारण क्या है? जब जिज्ञासु जिज्ञासा लेकर गुरु के पास पहुंचेगा, को हम कदम इदम जातम कर्ताश्य को विद्यते, जैसे प्रश्न लेकर जाएगा, गुरु अगर श्रोत्रिय न हो, वेदांत शास्त्र ना पढ़ा हो, तो उत्तर दे नहीं सकेगा। तो उत्तर दे नहीं सकेगा तो ऐसा गुरु के आश्रय लेने वाला कैसा होगा? तो इसीलिए श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ दोनों विशेषणों से विशिष्ट जो व्यक्ति होगा उनको गुरु आना। ऐसे तीनों प्रकार के गुरुओं का लक्षण शास्त्र में उसमें विचार सागर में आया कहीं। एक होता लक्कड़ गुरु, एक होता पत्थर गुरु, पत्थर गुरु और एक लक्कड़ गुरु और एक पत्तल गुरु। पत्तल समझते हैं ना, भोजन करके पत्तल करते ना, करके उसको नदी के पानी में फेंक देते हो तो क्या होता है? वो स्वयं तैरता है, परंतु उसके ऊपर यदि एक पत्थर रख दो तो, मिट्टी का ढेला रख दो तो उसको लेकर तैरेगा पत्थर, तो क्या करेगा? डूब जाएगा। ऐसे संसार में एक पत्थर गुरु है जो अपने आप को उद्धार करता है, अपने आप को उद्धार करता है, परंतु कोई जिज्ञासु आया हमारा उद्धार करो तो शिष्य का भार ग्रहण नहीं कर सकते, स्वयं ही डूबेगा और शिष्य को भी डुबाएगा। इसीलिए पत्तल गुरु तो अपने आप को उद्धार करेगा पर दूसरा का भार सहन नहीं कर सकता। एक होता है पत्थर गुरु, पत्थर गुरु समझते हैं ना, पत्थर है, पत्थर को नदी में छोड़ो तो डूबेगा और उसका आश्रय लेने वाला को भी डूबो देगा। डूबाएगा कि नहीं डूबाएगा? नहीं। ऐसे जो अविद्याग्रस्त है, अज्ञानी है, अविवेकी है, मूर्ख है, ऐसे मूर्ख के जो परंपरा का नाम आते गुर तू चला मैं गुर आने वा, ये कहावत है महात्माओं में। तो ऐसे व्यक्ति जो पत्थर है, अज्ञानी है, अविवेकी है, उसको जो हमने गुरु बनाया तो क्या होगा? तू तो स्वयं डूबेगा और हमको भी डूबाएगा। अंधे नहीं बे नियमाना जथा अंधा। तीसरा गुरु है लक्कड़ गुरु। लक्कड़ कहते नौका को, नौका, नौका में बैठने वाला को नौका इस पार से उस पर लगा देता है, लगा देता है कि नहीं, और स्वयं ही लग जाता है। ऐसे लक्कड़ गुरु के जगह में श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु समझना। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु अपने आप को भी संसार सागर से पार लगाएगा और उनके आश्रय लेने वाला को भी पार लगा देगा। इसी बात को लेकर नोदक, बोधक और मोक्षदक। अब एक आदि पुराण में लिखा है, गुरु जो काम ही हो, कृष्ण रूपा, भगवान कृष्ण का स्वरूप समझ लेना। भगवान कृष्ण कैसा है? कहते कामिना कृष्ण रूपा, कामी गुरु कृष्ण के रूप में जानो, है नहीं बात। और यदि लोभी है तो वो किस रूप में जाना जाए? बामन रूप में जानो। बामन रूप में, बामन लोभी है कि नहीं? मांगा ना बलि से। तो कामी और लोभी और क्रोधी गुरु हो तो नृसिंह रूप में जानो, नृसिंह भगवान। तो ये तीन प्रकार के गुरु है ना मानो इस पर। परंतु कहते इसमें कभी मनुष्यता बुद्धि नहीं करना, क्यों? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर। गुरु कैसा है? साक्षात ब्रह्मा के रूप में है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु है, हमारा गुरु ब्रह्मा है, हमारा गुरु विष्णु है। अर्थात विष्णु के रूप में भी गुरु है, गुरु के रूप में भी विष्णु है, ब्रह्मा के रूप में विष्णु है, विष्णु के रूप में भी ब्रह्मा है, यानी बात। और महेश्वर के रूप में, महेश्वर के रूप में भी गुरु है और महेश्वर भी गुरु के रूप में है। इसीलिए गुरु में कभी मनुष्यता बुद्धि करना नहीं। कैसी भी अवस्था, किसी भी अवस्था में गुरु को मनुष्य नहीं समझना, हमेशा ब्रह्मा विष्णु महेश्वर के रूप में जानना। तो ऐसे ही तीन प्रकार के वे कहते हैं मोक्षद गुरु कौन होगा? मोक्षद गुरु मुक्ति देने वाला मोक्षद गुरु है। तो मुक्ति सब गुरु नहीं दे सकता, याद रखना। कौन देगा? जैसे या अष्टावक्र ऋषि, अष्टावक्र ऋषि के पास जाकर के जनक जी ने कहा गुरु हमको उपदेश दीजिए, हाँ मुक्ति दीजिए। अष्टावक्र ऋषि ने कहा पहले दक्षिणा दे, पहले दक्षिणा चढ़ा। तो दक्षिणा क्या देगा? दक्षिणा के रूप में तू आपने मन दे दे। जनक जी ने आपने मन दे दिया, फिर का उपदेश दे होते वो कैसे उपदेश मांग सकता है? क्यों? तू तो मन तो दिया, मन के बिना तू बोलेगा कैसे? जनक जी चुप हो गया। तो मुक्ति देने वाला स्वयं मुक्त होगा तो संसार सागर से वो पार होगा। तो परीक्षा लोकान कर्मसितन ब्राह्मण और निर्वेदम आया नास्ति अकृत कृतिना। स गुरु में भी अभिगच्छत समित प्राणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तो गुरु के पास जाने के लिए क्या चाहिए? अधिकारी बनना चाहिए ना। अधिकारी बनोगे तब गुरु के पास जाओगे। तो गुरु के पास जाकर के गुरु की परीक्षा करोगे कि नहीं? गुरु हमारे होने, हमारे गुरु होने लायक है कि नहीं है? हाँ? हम गुरु बनाने आपको गए तो परीक्षा करेंगे गुरु के अंदर योग्यता है कि नहीं, हमारे गुरु बनने के लायक है कि नहीं है। तो तुम तो गुरु का भी गुरु हो गए। हाँ? गुरु का गुरु नहीं हुआ? क्यों? गुरु का तुम परीक्षा कर रहे हो। इसीलिए शास्त्र के प्रमाण के अनुसार शास्त्र श्रवण करके जा करके गुरु के पास, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जा करके उनको दीक्षा लो। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु में अभी गच्छेत समित पाणी होकर के जाना। खाली रिक्त स्तम न गच्छेत, खाली हाथ से मत जाना। कहाँ? गुरु के पास। खाली हाथ से जाना है? खाली हाथ भरा हाथ लेकर के गुरु के पास क्यों जाए? खाली हाथ जाएंगे तब तो लाएंगे ना। तो गुरु के पास क्या चढ़ा वड़ा है तो उसको लाने के लिए क्या चाहिए? हाथ खाली चाहिए, झोला खाली चाहिए कि नहीं चाहिए? गुरु जी प्रसाद देगा ना, तो प्रसाद लेकर आना है ना। तो यहां ऐसा नहीं समझना। गुरु जो है ना यदि लोभी हो, हमने क्या बोला था? गुरु लोभी हो तो कैसा मानना चाहिए गुरु को? भावान रूप में। परंतु देखो भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा गुरु लोभी हो उसको मार डालना चाहिए। गुरु लोभी हो तो गुरु नहत्वा ही महानुभावान श्रेय भोक्तुम भक्ष्य में पिय लोगे, हत्वार्थ कामांस गुरु नहीं भुंजीय भोगन रुधिर प्रतिज्ञान। आप अर्जुन ने तो रोने लगा गुरु जी को मारो कैसे, तो अर्थ कामान गुरु न हत्वा, अर्थ कामी गुरु हो गुरु को मार डालो कहते। तो अर्जुन ने मारा कि नहीं मारा? नहीं मारा। अरे महा उसमें एकादश स्कंद में जाकर देखो या ग्यारहवा अध्याय में देखो गीता के अर्जुन ने भीष्माचार्य को मारा कि नहीं मारा, द्रोणाचार्य को मारा कि नहीं मारा, कृपाचार्य को मारा कि नहीं मारा? क्यों कृपाचार्य को नहीं मारा? परंतु उसमें मारा, वो आशीर्वाद मिला उसको बाद में। अश्वत्थामा बोले व्यास हनुमान विभीषण कृपा परशुराम से सब कहते चिरंजीवी न, ये चिरंजीवी होगा दुखी हो रहा है। इन लोगों चिरंजीवी कैसे बनाया? आप बुढ़ापा हम अनुभव कर रहे, बुढ़ापा में कितना कष्ट होता है कि नहीं? बुढ़ापा में बैठा नहीं जाता, उठा नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पिया नहीं जाता। ऐसे अगर कहां से द्वापर के अंत में उनको आशीर्वाद मिला चिरंजीवी होने का, आप एक कलेजुग में अभी 5000 पर व्यतीत हो गया है, बुढ़ापा से क्या काम है? अभी हर एक बुढ़े कहते हैं कि भाई मर जाना अच्छा है, मर जाना चला जाना अच्छा है, परंतु मरना चाहने से मृत्यु आ जाती है क्या? अभी देखो ये आचार्य ये शस्त्र विद्या का आचार्य गुरु है कौन? द्रोणाचार्य। इनको मारा कि नहीं मारा? क्यों? वो अर्थलोभी था। क्यों अर्थलोभी था? कौरव का पक्ष दिया, कौरवों का पक्ष दिया। कौरव लोग कौन से था? दुर्योधन का पक्ष का है। दुर्योधन क्या था? अर्थलोभी था कि नहीं? पूरा राज्य हड़प कर लिया था। तो जिसको लोभी का साथ देने वाला भी लोभी माना जाता है, लोभी का साथ देने वाला भी लोभी ही माना जाता है। इसीलिए विश्व पिता महाकवि अर्जुन ने संहार किया कि नहीं? तो ऐसे आदि पुराण में जो बोला है गुरु के ऊपर ऐसा दृष्टि कुदृष्टि मत करो। आनी बात गुरु से त्वम कृत हम कृत निर्जित विप्रान शास्त्रार्थतः स्मशान जायते वृक्ष कंक वृद्ध उपसेवित, ऐसा एक श्लोक आता है। गुरु से हुंकार करके त्वं कर करके बात मत करो, अगर करोगे ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में हरा करके बाहबा मानोगे तो वो जो स्मशान में जो वृक्ष होते हैं ना, एक वृक्ष होता है स्मशान में, उसमें गिद्ध बैठता है, कंक बैठता है, कंक वृद्ध उपसेवित। तो इसीलिए ब्राह्मणों को कभी भी कोई भी ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों को शास्त्रार्थ में कभी हराने की अपमान करने की लांछित करने की कोशिश नहीं करना, ऐसे शास्त्र में लिखा है। तो इसीलिए जो आचार्य है वो शस्त्र विद्या का आचार्य है, द्रोणाचार्य शस्त्र विद्या का गुरु है, और ये भीष्माचार्य भीष्म पितामह कौन सा आचार्य है? अरे वंश परंपरा के गुरु है, ये वंश परंपरा के गुरु आया है। ये दोनों को मार करके ही अर्जुन जो है ना राज्य लाभ किया है। तो इसीलिए लोभी गुरु जहां होता है ना, वो लोभी गुरु को संहार करने के भगवान कहते कोई दोष नहीं लगेगा। अच्छा अच्छा अभी देखिए आप लोग बैठे हैं ना, आप लोगों को देर हो रहा है। क्यों देर हो रहा है? लक्ष्मी अभी आए नहीं, कब आएगा? इसीलिए अभी है अपने बच्चों को समाप्त करते हैं। हरिओम तत्सव, हरिओम तत्सव।